लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कथा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रातःकाल के 6 बज रहे थे। इसी समय एक प्रौढ़ व्यक्ति जो शरीर का हष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ था गंगा स्नान के लिए जा रहा था। इस व्यक्ति के हाथ में पीतल का एक छोटा कमंडलू था। शरीर पर केवल एक रामनामी, बगल में धोती अंगोछा, नंगे पैर नंगे सिर। गंगा तट पर पहुंचकर उसने एक गंगापुत्र के तख्त पर आसन जमाया। गंगापुत्र उसे देखकर बोला, सदा जय रहे, भागीरथी चोला प्रसन्न रखे। ठंडाई बनेगी दादा? हां बनेगी, क्यों नहीं। गंगापुत्र ने पुकारा, अरे मोहना, ओ मोहना। एक ओर से आवाज आई, आए। साले का तलवा नहीं लगता, इधर उधर घूमा करता है। बच्चा है, अभी उसकी खेलने खाने की उम्र ही है। तो दद्दू यहां कौन खेत जोतना पड़ता है, खाली तखत पर बैठे रहने का काम है। इसी समय मोहन आ गया, 12-13 बरस की वयस। आते ही पूछा, काहे चाचा। है तुम्हारा सिर, ससुरा पूछता है काहे। चलो इधर आकर सिल धो, लोटा भर लाओ। मसाला है कि मगाव है, दादा ने पूछा। आज भर को तो है, कल देखा जाएगा। गंगापुत्र ने झटपट एक थैली से ठंडाई का मसाला तथा भांग निकाली और पीसने का कार्य आरंभ कर दिया। शाम को यहां कथा होती है, दादा ने प्रश्न किया। हां दद्दू। रामायण की? हां दद्दू, अच्छी कहते हैं। हां अच्छी कहते हैं, हमें तो अच्छी लगती है, दूसरे की हम जानते नहीं। भीड़ भाड़ होती है? हां बहुत स्त्री पुरुष आते हैं। आज हमारी भी इच्छा है कि हम भी सुने। जरूर सुनो दद्दू, सुनने लायक है। 8 बजे से होती है? हां 8 ही समझो, 8 बजे लग्गा लग जाता है। खत्म कब होती है? 10 बजे, 2 घंटे होती है डट के। आज जरूर आवेंगे। तो ठंडाई भी यहीं आकर छानना, हम बना रखेंगे। अच्छी बात है, तब तो 7 बजे आ जाएंगे। दद्दू ने झट टेट से 1 रुपया निकालकर गंगापुत्र के सामने फेंका और कहा, तो सामान मंगा लेना। कौन जल्दी थी, शाम को ले लेते। वो सब ठीक है। ठंडाई तैयार होने पर गंगापुत्र ने पहले दद्दू को पिलाई, तत्पश्चात स्वयं पी। जब थोड़ी शेष रह गई तो मोहन को देकर कहा, ले पी जा। मोहन ठंडाई देखकर बोला, हमारे लिए इतनी? बहुत तो है, गंगापुत्र बोला। दद्दू बोल उठे, अभी से ज्यादा भांग मत पिया करो। अरे दद्दू, ये साला बड़ा नसीब आज होता जा रहा है। तुम ही बनाए दे रहे हो, इसका क्या दोष। हम तो दद्दू इस मारे दे देते हैं कि आत्मा नहीं मानती। हम कोई चीज खाएं पिए और ये खड़ा मुंह ताके, ये बात आत्मा स्वीकार नहीं करती। नशे की चीज के संबंध में ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दद्दू, हम ना भी दें तब भी ये साला पिएगा तो जरूर ही, और भांग पीने में हर्ज भी नहीं है। हम भी बचपन से ही पीने लगे थे, भांग से तो हम लोग बच ही नहीं सकते। ये बात दूसरी है। हां दद्दू, अपना तो यही शौक है, दोनों समय भांग छानना, गंगा माता की शरण में पड़े रहना और आप लोगों की जय जयकार मनाना, यही हमारा रोजगार समझो, काम समझो। हमारे बाप दादा भी यही करते आए और आगे हमारे लड़के भी यही करेंगे। इस मारे भांग को तो हम रोकते नहीं। हाँ, और नशे के हम शत्रु हैं, चरस अफीम शराब इनसे दूर रहते हैं। इसके वास्ते भी इन्हीं चीजों की रोकटोक है, भांग की रोकटोक हम लोग नहीं करते। तब ठीक है, ये कहकर दद्दू स्नान करने चले गए। संध्या समय दद्दू पुनः गंगा तट पहुंचे, देखा कि गंगापुत्र भांग पीसने में जुटा है। दद्दू को देखते ही बोला, आओ दद्दू, बस तैयार ही है, छानना बाकी है। हाँ हाँ खूब मजे से छानो, कोई जल्दी नहीं है। बस तैयार है, मोहन जाकर 2 पैसे की बर्फ तोला। ले ये पैसे। दद्दू स्नान भी करोगे? हाँ इच्छा तो है, शौच भी जाएंगे। तो दद्दू उस पार रेती में जाओ। सो तो जाएंगे ही। थोड़ी देर में भांग तैयार हो गई। दद्दू ने भांग पीकर एक नाव वाले को पुकारा, उसकी नौका में बैठकर बीच गंगा की रेती में गए। लोटे में पानी लेकर रेती में चले गए। कुछ दूर निकल जाने पर दद्दू ने कुछ दूरी पर दो मनुष्यों की धुंधली मूर्ति देखी। संध्या का अंधकार बढ़ रहा था। शौच से निवृत्त होकर जब दद्दू नौका की ओर लौटे तो वे दोनों मूर्तियां भी आ गई थीं। उनकी नौका अलग खड़ी थी। उस नौका पर एक वृद्धा स्त्री बैठी हुई थी। दोनों मूर्तियों में एक तो पुरुष था, दूसरी स्त्री। पुरुष की वयस 40 के लगभग थी, स्त्री तरुणी 25-26 वर्ष की तथा साधारणतया सुंदरी थी। स्त्री वृद्धा के पास नौका में बैठ गई। नौका चल दी, पुरुष रह गया। दद्दू की ओर बढ़कर उसने पूछा, ये आपकी नाव है?
हाँ, कहिए।
कुछ नहीं, उस पार जाना था।
तो आइए बैठिए, मैं जा रहा हूं।
आपको कोई कष्ट?
अजी साहब, नाव में तमाम जगह है, कष्ट की कौन बात है।
धन्यवाद। दोनों नौका में बैठकर चले। दद्दू ने पूछा, आप यहीं रहते हैं?
जी नहीं, मैं तो परदेशी हूं।
यहां रिश्तेदारी होगी?
जी नहीं, मैं कथावाचक हूं।
अच्छा, आपकी कथा कहाँ होती है?
यहीं तो होती है, उस पार।
रामायण की कथा?
जी हाँ।
अच्छा, आप ही कथा कहते हैं, मैं आज आपकी कथा सुनने ही आया हूं।
अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है।
आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, इससे उत्सुकता उत्पन्न हुई।
हाँ, लोग प्रशंसा करते हैं,
परंतु ये उनकी दया है। मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल राम गुणानुवाद करता हूं।
खैर, आपको यही कहना शोभा देता है।
आपने बड़ी कृपा की, आज कथा भी बड़ी अच्छी है।
आज कौन सा प्रसंग है?
आज फुलवारी का प्रसंग है।
वाह, बड़ा सुंदर है।
इसी प्रकार की बातें करते हुए दोनों इस पार आए। कथावाचक महोदय तो अन्यत्र चले गए। दद्दू पुनः उसी गंगापुत्र के तख्त पर आकर बैठ गए।
अब स्नान कर डालो दद्दू,
गंगापुत्र बोला।
हां।
दद्दू इस समय विचार मग्न थे। कथावाचक के साथ वो तरुणी कौन थी? दोनों अकेले रेती में क्यों गए थे? वृद्धा कौन है? इत्यादि प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। ये सोचते सोचते दद्दू ने स्नान किया और पुनः आकर तख्त पर बैठ गए। तख्त पर आकर गंगापुत्र से बोले, ये कथावाचक कैसे आदमी हैं?
अच्छे हैं दद्दू।
चरित्र के भी अच्छे होंगे?
अभी तक कोई बात तो सुनने में नहीं आई।
दद्दू ने सोचा, संभव है वो तरुणी उनकी पत्नी हो। परंतु फिर ख्याल आया कि यदि पत्नी होती तो उन्हीं के साथ नौका में बैठकर आते, अलग से आने की क्या आवश्यकता थी। दद्दू के मन ने कहा, जरूर दाल में कुछ काला है। दद्दू पहले भी अनेक कथावाचकों की कथा सुन चुके थे। उनमें अधिकांश विद्वान तथा चरित्रवान थे, परंतु इन कथावाचक के संबंध में उनके हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। दद्दू ने सोचा, इनका पता लगाना चाहिए कि किस वेश में है।
अच्छा, अब समय तो हो गया, कथा आरंभ होने वाली है।
हाँ दद्दू, बस चलते ही है। थोड़ी देर में गंगापुत्र दद्दू को लेकर चला। कथा स्थान पर पहुंचकर दद्दू ने देखा कि काफी भीड़ जमा है। व्यास गद्दी के निकट स्त्रियों का समूह और उनके पीछे पुरुषों का। दद्दू को देखकर कथावाचक महोदय ने उन्हें बुलाकर अपने निकट ही बिठाया। पुरुषों में अनेक दद्दू के परिचित थे, उनसे दद्दू का प्रणाम नमस्कार हुआ। कथा आरंभ हुई। कथावाचक महाशय खींचतान करके अर्थ समझाने लगे। जनता वाह वाह करने लगी। दद्दू चुपचाप बैठे सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर जब दद्दू चले तो गंगापुत्र ने पूछा, कैसी रही?
ठीक है भाई,
अर्थ और व्याख्या करने में खींचतान बहुत करते हैं।
दद्दू, ये तो हम जानते नहीं, इतना पढ़े ही नहीं है, हमें तो सुनने में अच्छी लगती है।
हाँ खैर, तुम उन गूढ़ बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक बात बताता हूं।
कहिए।
कोई ना कोई कांड होने ही वाला है।
कांड कैसा दद्दू?
बस देख लेना, इतनी बात बता दी है।
अरे नहीं दद्दू, कांड वांड कुछ ना होगा। हम लोग यहां क्या खाली चंदन घिसने को बैठे हैं?
जरा कोई बात देखे तो मारी लाठियों के भुरकुस निकाल दे।
तुम्हें पता लगेगा तब तो।
हमसे कोई बात नहीं छिप सकती।
हमें जो नाव वाला ले गया था उससे पूछना।
अच्छा।
हाँ,
हम अभी बुलाते हैं। ये कहकर उसने मोहन से कहा, जरा शिवनाथ को बुला लेना, थोड़ी देर में शिवनाथ आ गया। शिवनाथ से दद्दू ने पूछा, ये औरतें कौन थी?
मैं नहीं जानता सरकार,
जयदयाल की नाव पर गई थी।
अच्छा, उसे बुलाओ।
जयदयाल के आने पर उससे भी यही प्रश्न किया गया।
जयदयाल बोला, मेरी नाव पर तो आज ही दोनों गई थी।
कथावाचक भी साथ गए थे?
नहीं, वो दूसरी नाव पर थे।
रेती में अकेले दोनों गए थे?
साथ तो गए नहीं, पहले कथावाचक जी चले गए थे, फिर वो औरत गई थी।
कथावाचक जी रोज जाते हैं।
चार दिन पश्चात जब दद्दू सवेरे स्नान करने गए तो गंगापुत्र बोला,
दद्दू कल रात तो कथावाचक जी पकड़े गए।
दद्दू किंचित मुस्कुराकर बोले,
अच्छा क्यों?
एक औरत को भगाए लिए जा रहे थे। पहले तो इधर से नाव द्वारा रेती में गए, रेती पार करके धारा में पहुंचे। वहां नाव लगी थी, उस पर बैठकर उस पार पहुंचे। बस जैसे ही उस पार पहुंचे धर लिए गए। जान पड़ता है पहले से ही वहां आदमी लगे थे।
मैंने कहा था कि कोई कांड होने वाला है।
हां दद्दू, आपने तो कहा था।
दूसरे दिन जब दद्दू स्नान करने गए तो गंगापुत्र बोला,
लाओ दादा तुम्हारे चरण छू लें।
क्यों क्यों?
हमें सब मालूम हो गया।
क्या मालूम हो गया?
दद्दू ने पूछा।
जिन्होंने कथावाचक को पकड़ा वो आपके ही आदमी थे।
दद्दू हंसने लगे।
खूब ताड़ा दद्दू,
ये कथा कैसी रही?
बहुत बढ़िया।
वो औरत कौन थी?
अब इससे तुम्हें क्या मतलब?
हमें किसी भले आदमी की बदनामी नहीं करनी है।
कथा का असली पुण्य तो आपने लूटा।
दद्दू ने हंसकर पूछा,
सो कैसे?
एक अबला का उद्धार किया, एक भले आदमी की आबरू बचाई।
आबरू बाबरू तो खैर क्या बचाई,
हां भागने नहीं पाई बस इतना ही समझो।
यह भी थोड़ी बात नहीं है, क्या पुलिस में दे दिया?
नहीं, मारपीट कर छोड़ दिया। पुलिस में देने से सब जगह बात फैल जाती।
सुना मार तो ऐसी पड़ी कि जन्म भर याद रहेगी।
कथावाचक जी तो भाग ही गए,
अब भी क्या रह सकते थे, परंतु हमारी कथा अच्छी रही।
बहुत बढ़िया, आपने तो कथावाचक जी की ही कथा बना दी।
दद्दू हंसने लगे।
अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कथा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।